नूर की इस बात पर रेहान और सादिया दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतना खुलकर क्या कह रही है। रेहाना बेगम ने नरमी से कहा, अरे मैंने तो अभी बताया ना कि हमारे लिए तुम्हारी कितनी अहमियत है, तुम हमारी बेटी हो। नूर ने हल्की सी मुस्कान के साथ लेकिन बात में कसक लिए जवाब दिया, वो तो आपके लिए है, बाकी लोगों के लिए थोड़ी है। रेहाना बेगम को तभी याद आया कि शायद ये सब अरमान की कही हुई किसी बात की वजह से है। उन्होंने बात समझते हुए फरीद खान की तरफ देखा। फरीद ने तुरंत रेहान से कहा, रेहान अरमान को समझाओ, उसकी वजह से नूर कितनी परेशान है। ये बताएंगे, नूर ने तुरंत बोल दिया, मानो उसने पहले से तय कर रखा हो। बिल्कुल, फरीद खान ने सख्त लेकिन अपनत्व भरे लहजे में कहा, उसे डांट भी लगाएंगे। तभी इकबाल ने बीच में दखल दिया, जैसे बात को वहीं खत्म करना चाहते हों। छोड़ो इस बात को, उन्होंने कहा, इसकी तो आदत है, पागल है, कुछ भी बोल देती है। उनके शब्द सख्त थे लेकिन लहजे में एक पिता की बेबसी और प्यार छुपा हुआ था। नूर ने हल्की सी गर्दन झुका ली, मगर उसकी आंखों में अब भी वो जिद थी जो बताती थी कि वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही थी, वो अपनी इज्जत और अपने वजूद की बात कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर फिर से खामोशी छा गई, मगर इस बार वो खामोशी भारी नहीं थी बल्कि उन अनकहे जज्बातों से भरी हुई थी जिन्हें हर कोई महसूस कर रहा था पर कोई खुलकर कह नहीं पा रहा था। इसकी बात सही है भाई साहब, रेहाना बेगम ने पूरे यकीन के साथ कहा, चाहे अनजाने में ही सही, गलती तो अरमान की है, वो खुद आकर सब क्लियर करेगा। इकबाल ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हों। नहीं भाभी, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम निकलेंगे, उन्होंने शालीनता से कहा। लेकिन रेहाना बेगम ने तुरंत सख्ती से मना कर दिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी आप आराम करेंगे, शाम को ड्राइवर आपको जहाँ जाना होगा छोड़ आएगा। नूर पहली बार हमारे घर आई है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। उनके लहजे में अपनापन था, ऐसा अपनापन जिसे ठुकराना आसान नहीं था। कुछ देर बाद रेहाना बेगम अपने कमरे में आ गई, सादिया भी उनके साथ थी। नूर को देने के लिए कपड़े निकाल दो, रेहाना बेगम ने कहा। सादिया अलमारी से एक सुंदर सा सूट निकाल लाई। ये ठीक रहेगा, उसने पूछा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, रेहाना बेगम ने मुस्कुराकर कहा। तभी रेहान कमरे में आ गया, उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी साफ दिख रही थी। मॉम, इकबाल चाचा अपने साथ किसे ले आए हैं, उसने झुंझलाकर कहा। बात बात पर टोंट मारती है, रेहाना बेगम ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोली, अरमान की गलती तो है ना, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। तो अरमान की गलती है, मैंने क्या किया, रेहान ने पलटकर कहा, मुझ पर भी वो गुस्सा दिखा रही थी। रेहाना बेगम ने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने जख्म की परत खुल गई हो। कोई बात नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, उसके अब्बा इकबाल का हम पर बहुत एहसान है। एहसान, रेहान हैरानी से पूछ बैठा। रेहाना बेगम कुछ पल चुप रहीं, फिर जैसे अतीत में लौट गई हों। जब तुम पैदा होने वाले थे, उन्होंने कहना शुरू किया, मैं यहीं थी, तुम्हारे अब्बा बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, वो ट्रेन से लौट रहे थे। कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। रात का समय था, रेहाना बेगम आगे बोली, रास्ते में ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। तुम्हारे अब्बा को लगा कि पीसीओ से फ़ोन करके बता दूं कि मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। उनकी आवाज़ थोड़ी भर्रा गई। वो ट्रेन से उतरे, पीसीओ से फ़ोन किया और जैसे ही बाहर आए, उन्होंने रुक कर कहा, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, लूट के इरादे से चाकू से हमला कर दिया। रेहान सन रह गया। उस वक्त वहां कोई नहीं था, रेहाना बेगम ने आंखें नम करते हुए कहा। अगर इकबाल भाई साहब वहां ना होते तो, उन्होंने पल भर के लिए आंखें बंद कर लीं। इकबाल ने ना सिर्फ वो चाकू का वार अपने ऊपर लिया, उनका स्वर कांप गया, बल्कि तुम्हारी अब्बा की जान भी बचाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। इसलिए रेहाना बेगम ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं उनका एहसान कभी नहीं उतार सकती, ना ही उनके बच्चों को पराया समझ सकती हूँ। रेहान चुप था, उसकी सारी शिकायतें, सारी नाराजगी उस एक कहानी के सामने बेमानी लगने लगी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते खून से नहीं, कुर्बानी से बनते हैं। सुनो सादिया, रेहाना बेगम ने नरमी से कहा, कपड़े नूर को दे देना, और अगर तुम्हारे पास कुछ और देने को हो तो वो भी दे देना, ठीक है? जी, सादिया ने तुरंत हामी भर दी। उधर इकबाल के फ़ोन पर उसकी बीवी का कॉल आ गया। स्क्रीन पर नाम चमकते ही उन्होंने फ़ोन उठाया और बात कराने के लिए लाउंज की तरफ बढ़ गए, जहां नूर इधर उधर घूम रही थी। लो, तुम्हारी अम्मी का फ़ोन है, कहकर उन्होंने मोबाइल नूर के हाथ में थमा दिया। तुम दोनों ने वहां पहुंचकर मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? उधर से सुल्ताना बेगम की आवाज़ में नाराज़गी साफ छलक रही थी। अब्बा मेरे साथ हैं अम्मी, नूर ने बेफिक्री से कहा। आप इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हैं? इसी बात की तो फ़िक्र है, सुल्ताना बेगम ने झुंझलाकर कहा। अपने अब्बा की तुम एक भी बात नहीं मानती। और हाँ, साकेत आया हुआ है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। साकेत नूर की मौसी का बेटा, वो नूर को पसंद करता था और उससे निकाह करना चाहता था। ये बात नूर अच्छी तरह जानती थी, लेकिन हर बार की तरह उसने इस पर चुप्पी साध ली। अच्छा, उसकी अम्मी ने बात बदलते हुए पूछा, जिनके घर तुम रुकी हो, तुम्हारे अब्बा के दोस्त के घर वाले कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, नूर ने सहजता से कहा। खासतौर पर ताई अम्मी तो बहुत अच्छी हैं,
उसका इशारा साफ तौर पर रिहाना बेगम की तरफ था। तभी बाहर से तेज आवाज आई, जल्दी आइए, गेट खोलिए। ये फैजान की आवाज थी। शायद गाड़ी में कोई सामान आया था। वो जानबूझकर थोड़ा ऊंचा बोल रहा था ताकि कंटेनर वाले ड्राइवर तक उसकी आवाज पहुंच जाए, लेकिन उसकी आवाज फोन पर सुल्ताना बेगम ने भी सुन ली। ये कौन बोल रहा है? अम्मी ने तुरंत सवाल किया। नूर ने अनजाने में फैजान की तरफ देखा। उसने सादा सा थोड़ा पुराना पठानी सूट पहन रखा था। नूर को लगा शायद कोई नौकर होगा जो कामकाज देख रहा है, कोई काम करने वाला होगा, सुल्ताना बेगम ने संदेह भरे लहजे में कहा। ठीक है, मगर नूर ध्यान से रहना। आप क्यों इतनी फिक्र करती हैं अम्मी? नूर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। यहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं। चाहे जैसे भी हो, उसकी अम्मी ने सख्ती से कहा, अब तुम लोग ज्यादा देर वहाँ मत रुको, अपनी फूफी के घर चली जाओ, वहाँ रुकना ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, नूर ने समझाने की कोशिश की। मुझे यहाँ सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन सुल्ताना बेगम ज्यादा बहस के मूड में नहीं थी। उन्होंने दो चार और बातें की और फिर फोन काट दिया। उसी दौरान फैजान पास आ चुका था। उसने नूर को देखा और अदब से उसे सलाम किया, लेकिन नूर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सलाम का जवाब देने के बजाय वो चुपचाप अंदर की तरफ चली गई। फैजान कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ना कोई शिकवा था ना हैरानी, बस एक हल्की सी समझ थी, जैसे वो जानता हो कि कुछ लोग सामने वाले को देखे बिना ही अपने फैसले सुना देते हैं।